ضعيف ولا معرف بالله حضرت اخدر حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں جس کا عنوان ہے کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا نہ انجم ہے ہمارے نہ یہ شمس و قمر اپنا نہ انجم ہے ہمارے نہ یہ شمس و قمر اپنا سوا تیرے نہیں ہے سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا خداوندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے خداوندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے کبھی اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا کبھی اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا تو کر دے سنا کارا کو پھر بارے دگر اپنا تو کر دے سنا کارا کو پھر بارے دگر اپنا چھوڑا کر ویسے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو چھڑا کر ویسے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو تو فضل خاص کو ہم سب پہ عرب عام کر اپنا تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا بفیض مرشد کامل تو کر دے ہم زاغوں کو بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی آہ میں اختر تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر ہماتن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا ہماتن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے با خبر اپنا نہ انجم ہے ہمارے نہ یہ شمس و قمر اپنا
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم کتنے بجے میں کتنے بجے یہاں سے نکلنا ہوگا ہمارے شیخ حارث باللہ شیخ العرب العجم حضرت اقدس مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ کے فضل سے آپ کا فضل مانگتا ہوں آپ کی رحمت سے آپ کی رحمت مانگتا ہوں آپ کے فضل و رحمت سے آپ کی مشیت کا سوال کرتا ہوں آپ کے فضل سے آپ کا فضل مانگتا ہوں آپ کی رحمت سے آپ کی رحمت مانگتا ہوں آپ کے فضل و رحمت سے آپ کی مشیت یعنی چاہت کا سوال کرتا ہوں کہ آپ چاہ لیں میرا تزکیہ ہو جائے میں گناہ چھوڑ دوں جب اللہ چاہے گا تو پھر ساری گمراہ کن ایجنسیاں بھی ہم کو گمراہ نہیں کر سکتی ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کسی کو محمد علی قلعے کھینچے پکڑ کے اور دوسری طرف بہت سے لوگ کھینچے تو کس طرف جاتا ہے جہاں زیادہ طاقتور محمد علی قلعے کی طرف جائے گا آدمی یہ تو مخلوق ہے تو مثال ہے اس احکم الحاکمین جس بندے کو اپنی طرف کھینچے اور ایک طرف ساری کائنات کھینچے تو کہاں جائے گا خالق کی طرف جائے گا تو یا اللہ آپ کی رحمت سے آپ کی رحمت مانگتا ہوں کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ अगर अल्लाह का फजल ना होता और रहमत ना होती तो तुम में से कोई पाक नहीं हो सकता था, लेकिन जिसको अल्लाह चाहता है वो पाक होता है। तो फजल और रहमत और मशीयत, ये तीन चीज़ों के बगैर किसी का भी तस्किया नहीं हो सकता। नबी की सोहबत के बावजूद भी अगर अल्लाह का फजल ना हो, अल्लाह की रहमत ना हो, अल्लाह की मशीयत ना हो, तब भी पाकीज़गी नसीब नहीं हो सकती। तो किसी बड़े से बड़े वलीउल्लाह की सोहबत के बावजूद भी अगर अल्लाह का फजल ना हो, अल्लाह ताला की रहमत ना हो और अल्लाह की मशीयत ना हो, तो फिर नफ्स की इस्लाह नहीं हो सकती। तो ये बहुत अहम दुआ है, इसको अल्लाह से मांगना चाहिए। हमारा शेख फरमाते थे इसको रोज़ाना मांगो, अगर तस्किया अपना कराना है, अपनी इस्लाह करानी है, तो फरमाया ज़रूर अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह आपके फजल से आपका फजल मांगता हूँ, आपकी रहमत से आपकी रहमत मांगता हूँ, आपके फजल और रहमत से आपकी मशीयत मांगता हूँ, और आपके करम से आपका करम मांगता हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला करीम है, हमारे शेख रहमतुल्लाह ने फरमाया या करीम, ये अल्लाह का नाम है, ये इसमें आज़म है। फरमाया अगर चाहो कि तुम्हारी दुआएँ कबूल हों तो या करीम इसको भी अपनी दुआओं में शामिल कर लो। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़िक्रिया साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल के वक्त या करीम कहते हुए दुनिया से रुखसत हुए। इसके माने क्या हैं? जो कि बिला इस्तेहकाक नेमत अता करें, हम मुस्तहिक तो अज़ाब के हैं लेकिन वो नेमत अता करेगा अगर हम या करीम कहेंगे, लेकिन इतदाल के साथ। कभी याद आया फिर तीन दफ़ा सात दफ़ा पढ़ लिया। हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे सारे कामों में, दुनिया के हर काम में, दीन के कामों में आसानी के लिए या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये अल्लाह के तीन नाम लिया करो। लेकिन याद रखें कि ज़्यादा नहीं, कभी आधे एक घंटे में कभी तीन दफ़ा या सात दफ़ा पढ़ लिया। तसलसल के साथ जो जिक्र किया जाता है, यानी मुस्तकिल जिक्र ज़बान से करते रहेंगे तो फिर दिमाग में खुश्की हो जाएगी। उसकी अलामत क्या होगी? सर में दर्द रहने लगेगा, गुस्सा ज़्यादा आने लगेगा, नींद कम हो जाती है। ये तीन अलामतें दिमाग में खुश्की की हो जाती होती हैं। किसी और वजह से भी हो सकता है ये, लेकिन बाज़ औक़ात आदमी ज़्यादा जिक्र करता है, सर में दर्द रहने लगता है, लेकिन इसको भी सर पर सवार ना करें, सर में दर्द ना हो जाए, सर में दर्द ना हो जाए। फ़िक्र मुस्तकबिल, हकीमुल उम्मत मौलाना शबली साहब थानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया फ़िक्र मुस्तकबिल वावेला अवल अज़ मर गए, यानी मुस्तकबिल की फ़िक्र करना बीमारी आई नहीं, बीमारी से पहले शोर मचाना है, तो ये माकत है। फ़िक्र मुस्तकबिल माजी व मुस्तकबिलत पर्दा है खुदास्त, माजी की फ़िक्रों में लगना, मुस्तकबिल की फ़िक्रों में लगना, ये बंदे को अल्लाह से हिजाब में रखती है ये चीज़। तो सर में दर्द हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, नींद कम हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा जिक्र की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा जिक्र काफ़ी है, जिक्र लिसानी थोड़ा भी काफ़ी है ज़बान से। तो या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये या अल्लाह हम पढ़ते हैं, ये इसमें आज़म है, इसमें आज़म जो इसको पढ़ के अल्लाह से दुआ करो सब कबूल हो जाती है, कबूल हो जाती है। लेकिन उलमा फरमाते हैं अलिस्मुल आज़म अल्लाह, ये अल्लाह का जो ज़ाती नाम है, ज़ाती नाम, ये इसमें आज़म है, बिशर्ति अन तक़ूल अल्लाह वलैसा फ़ी क़ल्बिका सिवल्लाह, लेकिन इसकी शर्त ये कि जब अल्लाह निकालो ज़बान से तो दिल में गैरुल्लाह ना हो। लेकिन ये गैरुल्लाह ज़रा दिल रगड़े खाने के बाद निकलता है, किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ हो, अपनी बीमारियाँ बताए, इस्लाह कराए कि मेरे अंदर बदनज़री का मर्ज़ है, औरतों को देखने का मर्ज़ है, टी वी देखने का मर्ज़ है, झूठ बोलने का मर्ज़ है, गइबत करने का मर्ज़ है, किसी की बुराई करने का, कीना रखने का मर्ज़ है, लोगों की बुराई रखता हूँ दिल में, बोझ लोगों से रखता हूँ, ये मर्ज़ है, हैं? तो जो भी मर्ज़ हो, रूहानी बीमारी इसको कहते हैं, रूहानी बीमारी इसको कहते हैं, रूहानी बीमारी। तो इसको बताए और जो इलाज शेख बताए उस पर अमल करे, कुछ रोज़ में इस्लाह हो जाती है, चंद रोज़ में इस्लाह हो जाती है। तो या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, तो ये अल्लाह भी इसमें आज़म है। जो इसको हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह, कई हमने देखा कि बीसियों, मतलब कई लोग ऐसे जो कैंसर के मरीज, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो आए और उन्होंने कहा हजरत पानी पे दम कर दें, हजरत वाला ने दम कर दिया, वो माशाल्लाह ठीक हो गए। तो और क्या पढ़ा हम सुनते थे, या अल्लाह ताला शाफी, या अल्लाह ताला काफी, बस पढ़ के दम कर। तो चूंकि दिल में गैरुल्लाह नहीं है, अल्लाह उसी में बरकत डाल देता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मरीज को ही शिफा हो जाए, बाद औकात अल्लाह ताला की मशीयत होती है तो शिफा हो जाती है, मशीयत अल्लाह की चाह। इसीलिए बाज़े समझते हैं अल्लाह वाले की दुआ जरूर कबूल होती है। हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अहलुल्लाह की दुआएं आम लोगों से ज्यादा कबूल होती है। अल्लाह मजबूर नहीं होता, अल्लाह मजबूर नहीं कि दुआ की बस अल्लाह मजबूर हो गया अब अल्लाह को कबूल करना ही करना है, ऐसा नहीं। बाज़ औक़ात कबूल तो हो जाती है लेकिन ज़ुहूर बाज़ औक़ात देर से होता है या दूसरी तरह होता है। हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मोमिन जब दुआ करता है अल्लाह से तो अल्लाह ताला कभी तो वही चीज़ अता करते हैं, उसने गाड़ी मांगी उसको गाड़ी अता कर दी, उसने जनाब कोई और चीज़ ने बंगला मांगा उसको बंगला अता कर दिया, और कोई माल मांगा माल अता हो गया। कभी तो वही चीज़ अल्लाह अता कर देता है, कभी नेमल बदल देता है, कोई नेमल बदल दे देता है, कभी किसी बला को टाल देता है, कभी आखिरत के लिए ज़खीरा कर लेता है उस दुआ को, आखिरत के लिए अल्लाह ताला ज़खीरा कर लेते हैं कि जब बंदा देखेगा अपनी दुआ को आखिरत में तो ताज्जुब में पड़ जाएगा कि ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो मैंने दुआ की थी ये वाता तो नहीं दुनिया में हुई लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बदले मुझे क्या कुछ अता कर दिया। कभी वही चीज़ अल्लाह अता कर देता है, कभी नेमल बदल अता करता है, कभी किसी बला को टाल देता है, कभी आखिरत के लिए ज़खीरा कर लेता है। तो ये अल्लाह ये भी इसमें आज़म है, रहमान ये भी इसमें आज़म है, रहीम ये भी इसमें आज़म, करीम ये भी इसमें आज़म, या ज़ल जलाल वल इकराम ये भी इसमें आज़म। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बि अन्न लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्द ज़ल जलाल वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम। हदीस शरीफ में इसके इसमें आज़म होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई है, जो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई है इसके इसमें आज़म होने पर, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्न लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान, मन्नान यानी बहुत एहसान करने वाला, बदीउस समावाति वल अर्द आसमानों और जमीन का खालिक, ज़ुल जलाल वल इकराम ज़ुल जलाल साहिबुल इस्तिग़नाइल मुतलक व साहिबुल फ़ैज़ल आम। इसके माने क्या है, जो कि मुतलक मुस्तगनी है, सारे आलम से मुस्तगनी और सारा आलम उसका मोहताज है, या हय्यु या क़य्यूम, हय जिंदा हकीकी, क़य्यूम संभालने वाला जो हमेशा से है हमेशा रहेगा और हर चीज को हयात उसने अता की है, हय के मान क़य्यूम क़ायमुम बिज़ातिही व युक़व्विमु ग़ैरहु बिक़ुदरतिहिल क़ाहिरा, और जो 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 सारी कायनात उसकी कुदरत काहिरा से कायम है और वो अपनी ज़ात से कायम है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं, उसको किसी की ज़रूरत नहीं सारी कायम। तो ये इसमें आज़म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इसमें आज़म होने पर कसम खाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्न लकल हम्द, बहुत अहम दुआ है, जब भी दुआ करें इसमें आज़म के साथ कर लें इंशाल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अपनी दुआओं के अव्वल आखिर में दुरूद शरीफ लगा लो तो तुम्हारी दुआएं, वरना अगर दुरूद शरीफ नहीं लगाओगे तो तुम्हारी दुआएं ज़मीन और आसमान के दरमियान में मुअल्लक रहेंगी, क्योंकि दुरूद शरीफ क़त्ई कबूल है, हमेशा कबूल होता है और अल्लाह ताला करीम है, उसकी रहमत से बाईद है कि वो अव्वल आखिर को कबूल कर ले और दरमियान को निकाल के फेंक दे। तो जब अव्वल आखिर को कबूल कर लेगा, दुरूद शरीफ आपने लगा दिया, दुरूद शरीफ हमेशा कबूल होता है, कभी गैर मकबूल नहीं होता, इसीलिए दुरूद शरीफ का एहतमाम करने वाला भी मकबूल हो जाता है। हमारे हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे रोज़ाना 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ो, 100 दफ़ा रोज़ाना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रहेगा, एक कल्ब को मोहब्बत का ताल्लुक हो जाएगा, बार बार जब दुरूद शरीफ पढ़ता रहेगा 100 दफ़ा दिन में काफ़ी है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही ताल्लुक हो जाएगा। हजरत एक बुजुर्ग थे नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे, तो रोजाना हजार दफा पढ़ते, उस जमाने में दिल दिमाग मजबूत थे, वो हजार दफा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ते थे। एक दफा 700 दफा पढ़ा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई ख्वाब में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नूरुद्दीन आज 300 कम पहुंचे आज 300 कम पहुंचे, फौरन तड़प गए। एक दफा हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह अफ्रीका के सफर पे गए, गालिबन अफ्रीका का सफर था, तो वहां पर कई दिन रहे, तो हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह के एक अजल खुलाफा में से थे मौलाना यूनुस पटेल साहब, सारी दुनिया में अल्लाह ने उनसे काम लिया, रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल हो गया, हरम में इंतकाल हुआ काबे शरीफ के सामने, वो दुआ भी करते थे उसकी, काबे शरीफ के सामने हरम में इंतकाल हुआ, वहीं के कब्रिस्तान में उनको दफन किया गया। तो कैसी मुबारक मौत, जैसा आदमी जिंदगी गुजारता है वैसी अल्लाह मौत अता कर देता है अपने करम से, और जैसी मौत आती है उसी हाल में उठेगा। तो एक दफा उन्होंने ख्वाब, हमारा अतवाला का सफर हुआ, तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने शेख को कहना, उस ख्वाब का मजमून कुछ इस तरह था कि अपने शेख को कहना इस दफा की कारगुजारी नहीं पहुंची इस दफा की कारगुजारी नहीं पहुंची। तो मौलाना यूनुस पटेल साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे रहमतुल्लाह के पास हाजिर हुए, कहा कि हजरत मैंने ऐसे ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अपने शेख को कहना कि इस दफा की कारगुजारी नहीं पहुंची। तो हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह तड़प गए, कहा कि उफ़ो, हर सफर में फरमाया जो भी मैं दीनी खिदमत करता हूँ उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका सवाब पहुंचा देता हूँ, इस दफा रह गया तो वहां से तनब्बो हुआ, तवज्जो दिलाई गई, तो वहां से तवज्जो दिला दी गई, वहां से मुतनब्बी किया गया, कैसी मोहब्बत है सुभान, दोनों जानिब से इशारे हो चुके, हम तुम्हारे तुम हमारे हो चुके, दोनों जानिब से इशारे हो चुके, हम तुम्हारे तुम हमारे हो चुके। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना ये नेमत है, नेमत है। ई सआदत बज़ोर बाज़ू नेस्त ताना बख्शत खुदा ए बख्शिंदा, ये सआदत ज़ोर बाज़ू से हासिल नहीं होती, ज़ोर लगाए कोई दिमाग पर ऐसे थोड़ी से ताना, जिसको अल्लाह चाहता है उसको ये नसीब हो जाती है। ई सआदत बज़ोर बाज़ू नेस्त, ये ज़ोर से नहीं, लेकिन हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफुल्लाह साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दुरूद शरीफ की कसरत 100 दफ़ा, ये तो हमारे शेख फरमाते 100 दफ़ा काफ़ी, हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमाया दुरूद शरीफ की कसरत करने वाले को और इत्तबाए सुन्नत का एहतमाम करने वाले को अल्लाह ताला ज़ियारत नसीब फरमा ही देते हैं। और जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, उलमा फरमाते हैं इंशाअल्लाह अपने वक्त पे उसका खात्मा ईमान पर होगा, अपने वक्त पे उसका खात्मा इंशाअल्लाह ईमान पर होगा, इसकी ताबीर फरमाते हैं अपने वक्त पे उसका खात्मा ईमान पर उसको नसीब हो। एक दफ़ा मौलाना शाहबलोगनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को डांट दिया, अपने एक कोई था शख्स उसको डांट दिया, उसके बाद वो चला गया, अब तड़प गए, ना वो मेरा मुरीद था ना मेरा शागिर्द था, मैंने उसको इतना डांट दिया, अब उसकी तलाश में निकले, रात हो गई, बूढ़े थे, रास्ता भटक गए, जनाब पहुँचे, तलाश करते करते उसके घर पहुँचे, उसको कहा भाई मुझे माफ़ कर दे, उसने कहा हुजूर आप तो इतने बड़े हैं आलिम हैं अल्लाह वाले, आप मेरे बाप की तरह हैं, आप क्या माफ़ी मांग रहे हैं। कहा भाई वहाँ पर कुछ काम नहीं आएगा, बस तू मुझे माफ़ कर दे, जबान से जब तक नहीं कहेगा मैं जाऊँगा नहीं। अब कितना बज़ाहिर तो कैसा अमल लग रहा है ये, अब अब जनाब उसने कहा कि चलो मैंने माफ़ कर दिया, वापस आ गए, वापस आए तो जब रात को सोए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कश्ती में हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उसी कश्ती में, और ये दूसरी कश्ती में है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया ए अली अब्दुल गनी की कश्ती को मेरी कश्ती से जोड़ दो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी कश्ती को कहा मेरी कश्ती को पकड़ा और अपनी कश्ती से मिला दिया। तो जब वो कहा कि ठक की जो आवाज है उससे मेरी आंख खुली और कहा कि आज तक वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। और फिर फरमाया कि शायर नहीं थे लेकिन शेर कहा, मुस्तरिब दिल की तसल्ली के लिए हुक्म होता है मिला दो नाव को, मुस्तरिब दिल की तसल्ली के लिए, बेचैन दिल की तसल्ली के लिए, जो अल्लाह के रास्ते पे चलता है तो अल्लाह कैसी दस्तगीरी करता है, मेहरबानी से दस्तगीरी की, दास्तां सुन मेरी फकीरी की, थक गया जब भी राह में अख्तर, लाज रख ली है उसने पीरी की, मेहरबानी से दस्तगीरी की, वो दस्तगीरी करता है, मेहरबानी से दस्तगीरी की, दास्तां सुन मेरी फकीरी की, थक गया जब भी राह में अख्तर, लाज रख ली है उसने पीरी की। पीरी कहते हैं बुढ़ापे को, और पीरी पीरी भी है, असली पीरी मुरीदी है, असली पीरी मुरीदी है कि नहीं, वो हमारे अतवाला का एक वाज है, असली पीरी मुरीदी, एक तो जाली पीरी मुरीदी है, एक असली पीरी मुरीदी है, ये जाली पीरी मुरीदी से बचना चाहिए, कोई अल्लाह वाला ना हो, बस शरीयत और सुन्नत का मुत्तबे ना हो, उस पीर के हाथ में हाथ दे दिया, ये जाली पीरी मुरीदी है, जाली, एक एक ऐसी जाली पीर था तो वो जनाब नमाज नहीं पढ़ता था, कहता था कि मैं काबे में नमाज पढ़ता हूँ, मक्के में पढ़ता हूँ, मदीने में पढ़ता हूँ, तो उसके मुतालिकीन कहते थे बड़े पहुंचे में भाई ये तो वहीं पढ़ते हैं, तो बस वो कहता था मैं वहां पढ़ता हूँ, तुम लोग यहाँ पढ़ा करो मैं वहां पढ़ के आता हूँ। तो एक दफा उसकी बीवी बहुत तेज थी उस मुरीद की, उसकी बीवी ने कहा कि ठीक है तेरा पीर मक्के में नमाज पढ़ता है, और एक दफा फिर उसने अपने मुरीदीन को मुतअक्किद करने के लिए बैठे बैठे का धत धत धत, वो कहने लगी क्या हो रहा है, क्या हुआ हजरत क्या हुआ, कहा कि काबे शरीफ में कुत्ता घुस रहा है, उसको भगा रहा हूँ, काबे शरीफ वहां पर हमारे शेख रहमतुल्लाह ने फरमाया वहां पर पुलिस वाले खड़े होते हैं, कोई थैला नहीं लेके जा सकता, ये जालिम कुत्ता घुस रहा है, और ये कह रहा है वहीं से भगा रहा है, यहाँ आजम से भगा रहा है अरब का कुत्ता, तो धत धत कहने लगा, तो उन्होंने कहा हुजूर तो बहुत पहुंचे हैं यहीं से कुत्ता भगा रहे हैं काबे का। उसकी बीवी को जब पता लगा तो उसकी बीवी ने कहा अच्छा ठीक है, उसने बिरयानी बनाई या पुलाव बिरयानी पकाई और खूब उसको चावल से सबके बर्तनों को भरा, मुरीदीन की भी दावत की, शेख की भी दावत की, सबकी दावत की, खूब बर्तन को भरा उसने, और सब मुरीदों की जो प्लेट में चावल थे तो उनकी बोटियां तो ऊपर ऊपर माशाल्लाह रखी, चावलों के ऊपर ऊपर बोटियां रख दी, और पीर साहब की जो बोटियां जितनी थी वो 3-4 इंच नीचे दबा दी, 4 इंच नीचे दबा दी, और सिर्फ ऊपर चावल ही चावल। तो जब और कहा कि ये जो है ये वाली प्लेट अपने पीर साहब के सामने रखना, बीवी ने कहा उसकी। जब उसकी बीवी वो गया अपने शेख के पीर के पास, जाली पीर मुरीदी ऐसी होती है, हवाई एतकाद होता है, मुतकिद हुए तो ऐसे हुए जनाब कि ऐसा लगा कि अब कट मर जाएंगे, और जब बद एतकाद हुए तो ऐसा लगने लगा कि काट देंगे मार देंगे, ऐसा है बद एतकाद होते हैं तो ऐसा लगता है मार डालेंगे हम ही, पीर समझा हम ही मार डालेंगे जालिम, और जब एतकाद देखा तो कहा कि ये तो ऐसे मुतकिद हैं कि कट मरने को तैयार हैं, ये सब धोखेबाज। खैर अब जनाब वो पीर साहब के सामने जब सब चावल ही चावल उनकी प्लेट में, दूसरों की प्लेटों में तो चावल भी और बोटियां भी नजर आ रही, तो देखते रहे पीर साहब, इधर उधर देखा, खूब नजरें घुमाई, उसके बाद 1 इंच तक उंगली दाखिल की, 2 इंच, कुछ कोई मसले का हल नजर नहीं आ रहा, फिर उसको पकड़ा मुरीद को, कहा जालिम गुस्ताख बदमाश शर्म नहीं आती, पीरों की शान में गुस्ताखी करते हो, मुरीदों को बोटियां खिला रहे हो, पीर को महरूम रखा हुआ है, बहुत उसको कहा। उसकी बीवी अंदर से आ गई, उसने कहा पीर साहब यहीं से धत धत करके कुत्ता भगा रहे हो हरम का, 4 इंच बोटियां नीचे नजर नहीं आ रही, थोड़ा खुदाई करो। वहीं जब खुदाई की गई जनाब प्लेट में चावल उठो, नीचे तो बोटियां ही बोटियां, सारे मुरीद बदतकाद हो गए, गया तू है साली, निकालो इसको, डाली है ये, मेड इन डालना है, मेड इन डालना। हमारे हजरत वाला ने सिखाया कि ऐसा हो सकता है कि कभी देसी घी का डब्बा हो और अंदर डालडा निकले, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, देसी घी ऊपर लिखा हो और अंदर नकली घी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि नकली घी के डब्बे में देसी घी निकले। जरा गौर करें, डालडा खरीद के लेकर आए, अंदर से असली घी निकल रहा है। कभी ऐसा देखा? नहीं देखा ना। डालडा खरीद के लाए, अंदर से असली घी निकल रहा है। हाँ ऐसा होता है, असली घी के डब्बे में डालडा घी निकलता है। क्या माना? मतलब ये हो सकता है किसी अल्लाह वाले के रूप में कोई जाली पीर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका जाहिर सुन्नत और शरीयत के खिलाफ हो और अंदर से अल्लाह वाला हो, ऐसा नहीं हो सकता। दाढ़ी मुंडाता हो और अल्लाह वाला हो, ऐसा नहीं हो सकता। अंग्रेजी बाल रखे हो और अल्लाह वाला हो, ऐसा नहीं हो सकता। कभी डालडा के डिब्बे में जैसे देसी घी नहीं निकल सकता, और जो जाहिर में शरीयत और सुन्नत के खिलाफ हो और अंदर से अल्लाह वाला हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते वज़रू ज़ाहिर इस्मी व बातिना, जाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो और बातनी गुनाहों को भी छोड़ दो। तो हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जाहिरी गुनाहों को अल्लाह ताला ने मुकद्दम फरमाया, जाहिरी गुनाहों को छोड़ो और बातनी गुनाहों को छोड़ो। तो जाहिरी गुनाहों को छोड़े बगैर बातनी गुनाह नहीं छूटते। जाहिर पहले बनाना पड़ता है, बातिन तो बनता रहता है, मौत तक बनता रहता है। लेकिन ऐसा ये कहना कि अंदर से वलीउल्लाह है, कभी अगर आदमी कहता है मेरे अंदर दिल में दाढ़ी है, एक सामने का मेरे दिल में दाढ़ी है, जाहिर में नहीं है। तो एक बुजुर्ग ने फरमाया परचून की दुकान पे जाओ और खरीदो सामान, सौदा लो महीने का, और वो पैसे मांगे तो कहो दिल में पैसे, वो दिल में ही खंजर घोप देगा। हाँ कहेगा निकाल इसको, अंदर क्या कर रहे हैं? कहेगा दिल में पैसे। तो दिल में क्या कर रहे हैं? पैसे देने से काम होगा, निकालने से काम होगा, तो दिल में दाढ़ी क्या कर रही है? बाहर निकाले इसको। एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है, इससे कम पर कतरवाना मुंडाना हराम है, गुनाह है, कबीरा है। हराम काम करते हम लोग, और फिर दावा विलायत और अल्लाह की दोस्ती का ये सख्त गुमराही है। सुन्नत और शरीयत को कोई छोड़ के वलीउल्लाह नहीं हो सकता। हमारे शेख फरमाते थे कहीं लैला का खैमा लगाओ, लोग दूर दूर से जाएंगे लैला को देखने के लिए, कहीं पता लगे भाई लैला आ गई। लैला का बहुत तस्करा है किताबों में, अब लैला का पता लगा भाई लैला आ गई, तो लोग खैमा लगा हुआ है, तो लोग जा रहे हैं भाई लैला को देखने के लिए। अब जब पहुंचे, जैसे ही अंदर देखा वहां टिकट लगा हुआ है लैला को देखने के लिए। अब जब इसका नंबर आया देखने के लिए तो अंदर कुत्ता बंद है। इतना गुस्सा आएगा जालिम, लैला का बाहर लेबल लगा हुआ है, अंदर कुत्ता बंद। ऐसे ही कहा कि हमारे ऊपर मौला का लेबल लगा होता है, अंदर दुनिया का कुत्ता बंद होता है। तो उम्मत मुतना फिर होती है जब अमराज में हम मुबतला होते हैं, गुनाहों में मुबतला होते हैं। जब लोग करीब आते हैं तो देखते हैं इनकी तन्हाइयां तो गुनाहों में मुबतला है, टीवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, घर में शरई पर्दा नहीं है, नंगी फिल्में देख रहे हैं, औरतों से एहतियात नहीं है, और तो बेपर्दा औरतें आ रही हैं, दम कर रहे हैं पीर साहब, अपना दम निकल रहा है, दम कर रहे हैं, अपना दम निकल रहा है, खुद बेदम हो रहे हैं, ईमान के लाले पड़ रहे हैं। ये कैसी अल्लाह की दोस्ती है भाई? ये कैसा अल्लाह का ताल्लुक है? जिसकी खलवत और जलवत अल्लाह के साथ हो वो वलीउल्लाह होता है, चाहे ज्यादा नफले ना पड़ता हो। कलंदराना बाजों का शौक होता है, कलंदर होते हैं। हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जो कलंदर होते हैं उनकी नफले नजर नहीं आती, लेकिन उनका दिल एक लम्हे के लिए अल्लाह से गाफिल नहीं होता, चिपका रहता है अल्लाह के साथ। फर्ज वाजिब सुन्नत मौकदा जरूरी आमाल जरूर करते हैं, लेकिन उनके बातनी आमाल जाहिरी आमाल पर गालिब होते हैं। ये कलंदर औलिया अल्लाह का एक तबका है। हजरत मौलाना शाह अफगानी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह को ने ख्वाब में देखा कि एक कलंदर ने उनको लिफाफा दिया, खाकी लिफाफा। तो हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब लिख के भेज दिया। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ये या ख्वाब लिख के भेजा और उनको एक खाकी लिफाफा मिला। वो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो ख्वाब पहुंचा भी नहीं होगा,
یہاں سے ان کو خاکی لفافہ ملا ایک. جب لفافہ کھولا تو اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا خلافت نامہ تھا. پھر حکیم الامت کا جواب آیا, خاکی لفافہ تو آپ کو مل گیا ہوگا قلندر, قلندر کی طرف سے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ذوق بھی قلندرانہ تھا, حضرت مولانا پھول حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی قلندر قلندرانہ ذوق, ہر وقت اللہ کے ساتھ چپکے ہوئے, دل اللہ کی یاد میں غرق ہے, اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جو قلندر ہوتے ہیں ان کی باطنی اعمال ظاہری اعمال پہ غالب ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ظاہری اعمال میں فرض واجب سنت موقع میں کمی کرے گا, نہیں, نفنی اعمال کم ہوتے ہیں. اور ملامتی ایک طبقہ اولیاء اللہ کا, ان کے ظاہری اعمال بہت ہوتے ہیں, باطنی اعمال کے مقابلے میں ظاہری اعمال زیادہ ہوتے ہیں. تو خیر, جعلی پیری مریدی سے بچے, اصلی پیری مریدی کو اختیار کریں. ہمارے اتوالا نے فرمایا کہ ایک ایسے ہی پیر صاحب تھے, اس کے مرید نے کہا کہ اس نے پیر نے کہا کہ مرید نے کہا کہ تم اتنے کمزور ہو رہے ہو, آپ بہت کمزور ہو رہے ہیں حضرت. اس نے کہا, ظالم, نمازیں تمہاری ہم پڑھے ہیں, روزے تمہارے ہم رکھے ہیں, زکوٰۃ تمہاری ہم دیں, صدقے تمہارے ہم کریں, حج تمہارے ہم کریں, مرے ہم تمہارے لیے, جیے ہم تمہارے لیے, تم مسٹنڈے نہیں ہوگے تو کیا ہوگے, اور ہم گندے انڈے نہیں ہوں گے تو کیا. یعنی ہماری حالت ایسی خستہ ہو رہی ہے اور تم مسٹنڈے ہو رہے ہو, تمہاری نمازیں ہم پڑھتے ہیں, تمہارے روزے ہم پڑھتے ہیں, تمہارے حج ہم کرتے ہیں, تمہاری زکات ہم دیتے ہیں. اس نے کہا, حضرت آپ اتنا کچھ کرتے ہیں ہمارے لیے, تو میری فلاں چاول کی جو زمین ہے, کھیت ہے, اس میں چاول وہ سب آپ کے نام لکھتا ہوں. اس نے کہا, ان دیہاتیوں کا کچھ بھروسہ ہوتا نہیں ہے, ابھی کہہ رہا ہے ظالم کر کو پھر جائے, پھر جائے گا جلدی سے. اس نے کہا, چل پھر چل, کہاں ہے دکھا, نام پہ کر دے میرے. تو وہ اسے لے گیا, ساتھ ساتھ جانے لگا. تو وہ جو گیلی ہوتی ہے پگڈنڈی چاول کے کھیت میں, تو اس کا پاؤں سلپ ہونے لگا, تو وہ پیچھے پیچھے مرید چل رہا تھا, آگے آگے شیخ کو کیا, بھائی میزبان کو تو چاہیے آگے چلے لیکن وہاں کیا, تو مہمان کو شیخ کو آگے آگے اس نے رکھا کہ یوں چلو یوں چلو یوں چلو. تو خیر, بار بار اس کا پاؤں سلپ ہونے لگا پیر کا. اس نے دیکھا بار بار اس کا پاؤں سلپ ہو رہا ہے, اس نے ایک لات ماری اور وہیں کھیت میں اسے پھینک دیا. اس نے کہا, ظالم, تو یہ تو یہاں تو تجھ سے چلا نہیں جا رہا, اور تو کہہ رہا تھا نمازیں تمہاری میں پڑھتا ہوں, حج تمہارا میں کرتا ہوں, زکات تمہاری میں دیتا ہوں, پل صراط پہ ہم چلیں گے, وہ تو بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, یہاں تجھ سے اس پگڈنڈی پہ چلا نہیں جا رہا, وہاں کیا گول کھلائے گا, وہاں بھی مروائے گا, ابھی ظالم تم مرے تو اچھا ہے. یہ اعتقاد ہوتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اس زمانے میں کسی کو سچا پیر مل جائے, وہ ساری زندگی سجدے میں سر رکھے لیکن اس نعمت کا حق ادا نہیں ہوتا, ساری زندگی سجدے میں سر رکھے تو اس نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کسی کو سچا پیر مل جائے, یعنی سنت اور شریعت کا متبع اللہ تک پہنچائے, شیخ نورانی ذرا آگاہ کنت نور را با لفظہ ہمرا کنت, محروم فرماتے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو شیخ نورانی ہوتا ہے واقعی اللہ والا, وہ راستے سے آگاہ کرتا ہے, راستہ دکھاتا ہے, اور اپنے الفاظ, اس کے الفاظ میں نور ہوتا ہے, اور اس کے الفاظ سے پھر کان سے الفاظ داخل ہوتے ہیں, اور دل میں پھر نور بن جاتے ہیں, اور جس سے پھر راستہ, شیخ نورانی ذرا آگاہ کنت نور را با لفظہ ہمرا کنت, وہ راستہ چلاتا بھی ہے اور راستہ دکھاتا بھی ہے, منزل دکھاتا بھی ہے. اس کے الفاظ سے جو انوار دل میں آتے ہیں, اس انوار میں منزل نظر آنے لگتی ہے, اور اس کی باتوں سے راستہ طے ہوتا ہے. بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق, عمر بگزش ہونا شد آگاہ ہے عشق, بغیر رفیق کے جو چلا, بغیر کسی اللہ والے کے جو اللہ کے راستے کو طے کرنے کے لیے چلا, عمر گزر گئی لیکن اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ناشنا رہا, اللہ کی محبت سے واقف نہ ہو سکا. تو یہ سچے اللہ والوں کے لیے, دو نمبروں کے لیے, میڈ ان ڈالڈا کے لیے نہیں ہے یہ. بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق, عمر بگزش ان شد آگاہ ہے عشق. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یا اللہ یا رحیم یا رحمان یا رحیم اور ایک اسم اعظم اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یہ سب اسم اعظم ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے جب دل گھبرائے سات دفعہ یا حی یا قیوم پڑھو دل پہ دم کر دو. کیوں؟ کہا کہ زندہ حقیقی سنبھالنے والا. یا اللہ آپ نے سارے کائنات کو سنبھالا ہوا ہے, اتنے بڑے آسمان کو سنبھالا ہوا ہے, ساتوں آسمانوں کو سنبھالا ہوا ہے, عرش کو سنبھالا ہوا ہے, تو میرے چھوٹے سے دل کو سنبھالنا آپ کے لیے کیا مشکل. تو اللہ کو رحم آ جائے گا انشاءاللہ, گھبراہٹ دور ہو جائے گی. سات دفعہ یا حی یا قیوم پڑھ کے ہر نماز کے بعد جب کبھی دل گھبرائے, ہمارے شیخ سکھا دیتے اس کو دم کر دو دل پہ. یہ اس میں اعظم ہے, اسے دعا قبول ہوتی, اس سے دعا قبول ہو جاتی. لیکن یاد رکھیں گناہ سے بچے, گناہوں کی وجہ سے دعائیں پھر قبول نہیں ہوتی. اور ایک اسم اعظم اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی قسم کھائی ہے اسم اعظم ہونے پر. اس کے بھی اسم اعظم ہونے پر قسم کھائی ہے. خیر اگر اتنا لمبا یاد نہ رہے صرف اللہ کا نام لے کے دعا کر لیں, یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض. خیر مختصری بیان کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر عشاء کے بعد بھی بیان ہے. ہاں بس آخر میں ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پانچ اعمال ضرور بیان کر دو اللہ والا بننے کے لیے. ہر شخص ولی اللہ بن سکتا ہے, اللہ کا دوست بن سکتا ہے, اللہ کا دوست. اتنی ساری باتیں تو یاد رہے نہ رہے, پانچ باتیں تو یاد رہیں گی نا انشاءاللہ. پانچ گناہ چھوڑ دیں سب گناہ چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ. نمبر ایک, قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ لیں. نمبر دو, ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں, واجب ہے, تھوڑی کے نیچے سے دائیں سے بائیں سے. اسے کم پر کتروانا منڈانا حرام ہے اور گناہ کبیر ہے, گناہ کبیر ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب. دو ظاہری گناہ, دو باطنی گناہ. دو ظاہری گناہ چھوڑیں گے انشاءاللہ سارے ظاہری گناہ چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ رفتہ رفتہ. دو باطنی گناہ چھوڑیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے سارے رفتہ رفتہ باطنی گناہ چھوڑ جائیں گے. ایک مٹھی داڑھی مونچھے باریک کر لیں, یا آخری کنارہ اوپر والے ہونٹ کا چھپے گا, یہ بھی حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور تیسرا کام, ٹخنے کھول کے رکھیں, مردوں کے لیے حکم ہے, خواتین کو چھپانے کا حکم ہے. حدیث شریف میں جو ٹخنے چھپائے, جو حصہ ٹخنے کا چھپے گا اور جہنم کی آگ میں جلے گا. اور چوتھا گناہ کیا ہے؟ بد نظری. آنکھ سے کسی نامحرم عورت کو, حسین لڑکوں کو دیکھنا. زنا العین النظر, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. بخاری شریف کی روایت ہے, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. آنکھوں کا زنا, ٹی وی میں دیکھنا, کمپیوٹر میں دیکھنا, موبائل میں دیکھنا, گھر میں بھابھی کو, ممانی کو, سالی کو, تائی کو, چاچی کو, جتنی ذات بہنیں ان کو دیکھنا, یہ بھی سب آنکھوں کا زنا ہے. اپنے گھروں میں شرعی پردہ نافذ کرنے سب کا ارادہ نا انشاءاللہ, بد نظری سے بچے. پانچ, اس سے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی عطا کریں گے, ایمان کی مٹھاس. جس کو حلاوت ایمانی ملتی ہے, ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرمایا اس کو پورا دین مل جاتا ہے. حلاوت ایمانی ایسی چیز ہے, اللہ کا پیار ہے دل پر, ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے. سب کا ارادہ نا انشاءاللہ. اور پانچواں گناہ کیا؟ دل گندا کرنا, دل میں برے برے خیالات پکانا. وسوسہ آ جائے, خیال آ جائے, اس کی طرف توجہ نہ کرے, اپنے کام میں لگے رہے. وسوسوں کا آنا برا نہیں, لانا جمانا ٹکانا برا ہے. وسوسوں کی مثال ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسی جیسے بجلی کا ننگا تار. ہمارے یہاں بجلی کا تار گر جاتا ہے, کوئی عقل مند آدمی اس کو پکڑتا نہیں ہے. گھر سے نکلتا ہے, دیکھتا ہے کہ پڑا ہوا ہے بجلی کا تار, बिजली आए ना आए उसे बस वो उसको ना छूता है ना पकड़ता है ना दूर करता है ना भगाता है ना लाता है ना पोल खंभे से लगाता है, आदमी चलता बनता है। ऐसे ही वसवसे की मिसाल बिजली के नंगे तार की तरह, न वसवसे को दूर करे न लाए, भगाए भी नहीं, भगाएगा तब भी चिपक जाएगा, और लाए भी नहीं ना हटाए, बस अपने काम में लगा रहे। यह है वसवसों का इलाज। हकीम उल उम्मत मौलाना शबली साहब थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की कसम वसवसों का इलाज अदम इल्तफात है, यानी तवज्जो ना करना उसकी तरफ। सहाबा ने अर्ज किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या हमें ऐसे वसवसे आते हैं कि उनको जबान पर लाने के मुकाबले में हमें जलकर कोयला होना आसान है? यानी जबान पर लाना उनको मुश्किल है, जलकर कोयला होना आसान है, ऐसे वसवसे आते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाका सरीहुल ईमान, ये तो खुला हुआ ईमान है। तो हमारे शेख फरमाते थे जिसको वसवसे आए तो उसको फौरन सोचना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह रिसालत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुझको सनद ईमान मिल रही है, ईमान की सनद मिल रही है, क्योंकि दाका सरीहुल ईमान, ये तो खुला हुआ ईमान है। तो खैर ये सब बातों पर अमल की तौफीक नेक सोबत से होती है। अल्लाह ताला हम सबको पूरे दीन पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दुआ किताबें तकसीम होंगी, हर शख्स एक एक किताब से ले ले, उसको पढ़े, इंशाअल्लाह ताला खूब फायदा होगा।